छाया तुमार चरणाधारी तुमार चरण छाया बिगादमी छाया दोषोधि छाया गुना देह दासे छाया छाया सता संग देह हे आमारे छाया सता संग देह हे आमारे बसे छे संगे रयासे आमी बसे छे एकाकी आमार गाल नहीं लागे हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार भाल नहीं लागे हरि नाम संकीर्तने তুমি কৃপা করি শব্দ বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শব্দ বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার দিয়া পদ ছায়া শোভ হে আমায়া দিয়া পদ ছায়া তোমার চরণ ধরি তোমার তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় 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 প্রভুপাল 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 জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গণধারী জগন্নাথ বলভদ্র শুদ্রাজি কি জয় জয় নিত্যলক্ষ্মী পরম সুপ্রিয় অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদে শ্রী ভক্তন্ত স্বামী শ্রী প্রভুপাদ মহারাজ কি জয় জয় নিত্য স্বরম সুপ্রি বজ্রষ্টোত্তর সদশী ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রী ঠাকুর শ্রী প্রভুপাদ কি জয় নমাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি জয় অনন্ত গড়ি বৈশ্যবৃন্দ কি জয় বংশী বদানন্দ প্রভু কি জয় সমানন্দ প্রভু কি জয় নিজায় গৌর বিমানন্দে হরি হরি গৌর সাউন্ড থোড়া কম করো বহুত জাদা সাউন্ড হ্যাঁ নাম শ্রেষ্ঠ মনুমপি শচিপুত্র মাত্র স্বরূপং রূপং তৈশাগ্রজং মরুপরি মাথুরিং গোষ্ঠবাটি রাধা কুণ্ড গিরিবর মোহ রাধিকা মাধবাসং প্রাপ্ত জৈশ্য প্রথিত কৃপায়াং শ্রীগুরুং তন্নতো অস্মি বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পৈতানং পাবনেভ্যো वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्रादि कमादि तरंग मध्ये कृपामयी चं शरणं प्रपन्ने वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य विसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वैष्णव चरित सर्वदा पवित्र जय निंदा हिंसा करे भगति विनोद ना संभाषे तारे थाके सदा मौन धरी। इसको थोड़ा घुमाओ, नहीं तुम्हारा स्टैचू को श्लोक नहीं है। अच्छा चलो धन्यवाद। ठाकुर भक्तिमान कहते हैं वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। जो वैष्णव बनना चाहते हैं वास्तव में जीव मात्र वैष्णव है, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन कोई अगर अपने आप को वैष्णव बोल के परिचय देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसका चरित्र को सबसे पहले पवित्र बनाना पड़ेगा। जब अपना चरित्र पवित्र होगा तब बोलेगे वैष्णव सही है। इसलिए कहते हैं वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। जो व्यक्ति इस वैष्णव चरित्र का निंदा करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर उनका साथ किसी प्रकार का संभावना संभाषण नहीं करता है। संभाषण मतलब वार्तालाप। अगर कहे के भक्ति में बात करे चना कर हमें क्या फर्क पड़ता है? भक्ति विनोद ये जो गौड़ीय धारा है इस धारा का भगीरथ है। उनको क्रॉस करके बाद उसको लंघन करके जाने का शक्ति किसी में नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर है। उन्होंने वैष्णव का बारे में इसलिए है वैष्णवेर पद धोलि ताते करो शान क्ली सही मरो माध्यिक सेवन। माध्यिक मतलब चरणामृत। वैष्णव का जो चरणामृत है उसमें नहाना चाहिए और उसको पीना चाहिए। जावत निष्किन चरणा वैष्णवं वृणीत। राजा रघुगण जड़भरत को कहा भक्ति लाभ करने का उपाय क्या है? जब तक वैष्णव चरण धूल में अभिषिक्त तो नहीं हुआ जाता है तब तक वैष्णव नहीं बना जा सकता है। ये इतना सारे वैष्णव का गुणावली है। अजात शत्रु संता साधुनां साधु भूषणम। उनका कोई शत्रु नहीं है, किसी से उसका देश नहीं है, किसी को उसका कुछ उल्टा मनोभाव भी नहीं है। निंदा स्तुति में समभाव है, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एवं विद वैष्णव जिनका कृपा से जगत पवित्र ब्रह्मांड पवित्र हो सकते हैं। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने समस्त ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं लोग मुझे पवित्र होने के लिए मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे पार्श करते हैं। मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए वैष्णव का चरण धूल अपना शरीर में लगाता हूं। इसलिए कहते हैं ठाकुर भक्ति विनोद তোমারও বৈষ্ণব বৈভব, তোমারও আমার এই করুণ দয়া। এই যে বৈষ্ণব হে আপনার সম্পত্তি হে, তবে তবপতি হবে মোর গতি, পাব তব পদ ছায়া। যব আপনার বৈষ্ণব মুঝবে কৃপা করেগা, তব আপনার চরণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে যায়গা। এই বৈষ্ণব কা মাহাত্য হে। আজ এই যে দুনো, এই দুনো কোন হে? গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাস। গৌরাঙ্গ কো সঙ্গী হে, কি মহাপ্রভু জিস সময় আবির্ভাব হয়ে থে উসি সময় ই লোক মহাপ্রভু কা প্রকট লীলা মে সহযোগ কিয়া থা। এ গৌরাঙ্গ কা সঙ্গী হে। বর্তমান মে গৌরাঙ্গ কা সঙ্গী কোন হে? এই বলেগা আবি তো মহাপ্রভু হ্যায় নেই হ্যায়, তো গৌরাঙ্গ কা সঙ্গী কোন বনেগা? রূপ সনাতন মহাপ্রভু কো সাথ নিবাস নেই কিয়ে থে। মহাপ্রভু কহাঁ নীলাচল, এ লোক কহাঁ বৃন্দাবন। হৃদি জৈশ্য প্রেরণায়া বরাক রূপ অপি, এক ইধার এক উধার হ্যাঁ দুনো করনার মে। লেকিন হৃদি জৈশ্য হৃদয় মে জিসকা প্রেরণা কে দ্বারা বরাক উপি, বরাক শব্দ কা দু অর্থ, এক শ্রেষ্ঠ আর এক নিচ। ইস নিচ ব্যক্তি ভি রূপ গোস্বামী কেতে হেন আপনা আপকো দীনতা। যে ভক্তি সৎশাস্ত্র প্রবর্তক, এই ভক্তি শাস্ত্র কা প্রবর্তন কিয়ে থে। তো গৌরাঙ্গ কা সঙ্গী কোন হ্যাঁ? মহাপ্রভু কা সাথ জিসকা অভিন্ন হৃদয় হে। মহাপ্রভু কা সাথ অভিন্ন হৃদয় বলনে সে ক্যা ক্যা করনা পড়েগা? মহাপ্রভু কা যে লীলা হে, গৃহস্থ লীলা আর সন্ন্যাস লীলা, ইস দিনো কো দেখ করকে আপনা জীবন যাপন করনা পড়েগা। আর মহাপ্রভু কা যে ভজন হে, ক্যা ভজন হে মহাপ্রভু কা? বিপ্লম্ভ। বর্তমান মে যো ভি ব্যক্তি বিপ্লম্ব ভাব মে রাধা কৃষ্ণ কা উপাসনা করতে গৌরাঙ্গ কা সঙ্গী হে। বাকি সব গৌর ভক্ত হে, সঙ্গী নেই হে। ইসলিয়ে প্রণাম কিয়া গিয়া শিশি মে, ক্যা ভক্ত রূপ স্বরূপকম ভক্তাবতারং ভক্তাক্ষং নমামি ভক্ত শক্তিকম। ভক্তাবতার আর ভক্ত শক্তি দু শব্দ লাগায়া, এক শব্দ নেই লাগায়, এক শব্দ লাগা সকতে থে। ভক্ত অবতার আলাগে, ভক্ত শক্তি আলাগে। ভক্ত শক্তি গৌর শক্তি, গৌরাঙ্গ কা সঙ্গী হে। ভক্ত অবতার যো ভি মহাপ্রভু কা নাম লেতে হো সব গৌর ভক্ত হে। ইসলিয়ে গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাস। ये जो गौरांग का संगी है इनको क्या समझना चाहिए? ये लोग नित्य सिद्ध व्यक्ति है, साधन सिद्ध नहीं। ये जो नित्य सिद्ध व्यक्ति, इसको अगर हम ये समझेंगे जो भाई ये सब नित्य सिद्ध, तो क्या होगा हमारा? वो कृष्णचंद्र भजनंदन का पास जा सकता है। ताजे दोनों गौर संगी का आविर्भाव तिथि है, एक শ্যামানন্দ প্রভু আর এক বংশী বদানন্দ প্রভু। শ্যামানন্দ প্রভু কা নাম থা দুঃখী বা দুঃখিনী। তিন পুত্র মরনে কা বাদ ইনকা জন্ম হুয়া থা, আর এ হৃদয় চৈতন্য কা শিষ্যতা। हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित का शिष्य था। जब हृदय चैतन्य से आज्ञा लेकर के दुखी वृंदावन गया, ब्रज में गए, उसमें ब्रज में श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर भी पहुंच चुके थे। ब्रज में जाकर के तीनों जीव गोस्वामी पाद से मिले। आज जीव गोस्वामी देखा ये लोग शास्त्र में उत्पन्न है, ये लोग के द्वारा महाप्रभु का वाणी जगत में प्रचार किया जा सकता है, तो प्रचार कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति होना बहुत आवश्यक होता है, तभी प्रचार कार्य सुष्ठु भाव में होता है। तो इन्होंने तीनों को शिक्षा देने लगा जो गोस्वामी ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि षट सौंदर्य गोपाल चंपू ये सूर्य ग्रंथावली उनको शिक्षा देने लगा। इनमें से जो दुखी था इनका ये था सेवा था, जो निधु वन में झाड़ू मारना, ये झाड़ू का एक बहुत महत्व है। ये झाड़ू का द्वारा कितना व्यक्ति कृपा सिद्धि हुआ, इसका बहुत लोग कृपा सिद्धि प्राप्त किया। नरोत्तम दास ठाकुर ही झाड़ू के लिए गुरु मिला उनको। अगर नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू नहीं पकड़ते थे तो उनको लोकनाथ भट्ट गोस्वामी शिष्य शायद नहीं बना देते। तो झाड़ू का इतना महत्व है। ये झाड़ू का कृपा से प्रतापरुद्ध का महाप्रभु का कृपा मिल गया। झाड़ू कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जिस झाड़ू इधर उधर पड़ा रहते हैं जिसको हम लोग ताच्छिल्य करते हैं, झाड़ू इतना महत्व है। यही गुरुज निधुवन में साफ सफाई करना काम था। उनका सफाई देख करके राधारानी बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। जैसे प्रताप रुद्ध का सेवा देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो गया। राजा हिया निज सेवा अद्भुत अभिमान नहीं, तो उन्होंने राजा को कृपा किया। इसी प्रकार इनका सेवा देख कर राधा ने बहुत कितना सुंदर साफ सफाई कर रहे हैं। निधुवन में रोज रास होता है, तो रासलीला में अगर साफ सफाई वस्तु रहे तो सब स्वाभाविक खुशी होता है। ये साफ सफाई में जगाई माताई का अपराध काट गया। जब जगाई माताई अपना अपराध का परिहार करने के लिए नित्यानंद प्रभु का चरण में आगे गिरे, बोला प्रभु आपने तो कृपा किया, बहुत कृपा किया, लेकिन हमारा शरीर में दाह हो रहा है। न क्यों न जाने अनजाना हम किस किस व्यक्ति को क्या क्या किया, कोई ठिकाना नहीं है। हम किस किस व्यक्ति के पास जाकर के क्षमा मांगूं, बोला इसका कोई प्रतिकार तो बताओ। बोला गंगा घाट साफ करो, गंगा घाट अगर सफाई करोगे लोग आएगा देखेगा साफ सफाई तो तुम्हें आशीर्वाद करके जाएगा, तुम्हारा अपराध नष्ट हो जाएगा। ये साफ सफाई का इतना महत्व है, अपराध नष्ट हो जाता है। जब परिष्कार देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे वाह कितना सफाई है, ऑटोमेटिकली उसका हृदय प्रसन्न हो जाएगा और वो आशीर्वाद करेगा। तो अपराध नष्ट करने का ये भी एक जाएगा है। तो राधारण उसको कृपा करने की इच्छा हुआ, उन्होंने क्या किया अपना नूपुर को गिरा के चला गया। सुबह जो झाड़ू मारने आ रहा था उसको नूपुर मिला, वो अद्भुत नूपुर जिसका चारित्र आलोकित हो रहा है, वो नूपुर देख करके बोला कोई दिव्य वस्तु है, साधारण वस्तु हो नहीं सकता है। राधारानी नित्य सखी ललिता और विशाखा, विशाखा कृष्ण प्रिया है ज्यादा और ललिता राधा प्रिया ज्यादा है, राधा पक्ष और कृष्ण पक्ष। विशाखों को समसनाहा भी बोला जा सकता है। ललिता सदा सर्वदा राधा का सदरा ललित्व राधा लालित्व ललिता के द्वारा राधा रानी लालित्व हो रहा है। ललिता जो बोलेगा राधा रानी वही करेगा। ललिता बोलेगा चुपचाप बैठे तो राधा रानी चुपचाप बैठ करेगा कुछ नहीं करेगा। इसी ललिता के द्वारा लालित्व जो राधा रानी है उस राधा रानी की इच्छा हुआ इनको ऊपर कृपा करने के लिए तो उन्होंने नूपुर फेंक के आया और ललिता को कहा ललिता काल रास में नृत्य करते करते हमारा पाव का नूपुर किधर गिर गया जाकर थोड़ा ढूंढ के लेके आओ तो देख रहा है एक व्यक्ति झाड़ू मार के उसको हाथ में नूपुर है। अभी अगर गोपी वेश में जाए तो पहचान लेगा तो बरजो बालिका का वेश लेकर के उनका सामने गया और कहा हे भक्त प्रवर जो आपका पास नूपुर है ये हमारा घर का बहू का है कल शाम किधर आए सर आकर के उसका नूपुर गिर गया तो हम ढूंढने के लिए आपको मिला आप मुझे दे दो लेकिन उसका दिव्य ज्योति कहाँ जाएगा और वैष्णव का सामने भक्त का सामने भगवान छिप नहीं पाता है। बोला कोई बात नहीं हमको तो मिला है जिसका है वो आकर खुद लेके जाए हम क्यों देंगे उसको आने के लिए बोला आप क्यों आए उसको आने के बोला खुद लेके जाए। बोला घर का बहू आ नहीं सकता है। बोला तो हम देने वाला भी नहीं है तुमको लेकर आए। बोला ठीक है। तो राधा रानी पीछे मुचकी हंस हंस के आ रहे हैं। तो राधा रानी जब आया तो राधा रानी को समय जो सौंदर्य देख करके वहीं पर मूर्छित हो गया। राधा रानी अपना चरण धुली दुखी का सिर में लगाया और वो जो नूपुर था उस नूपुर से अपना चरण का जो जाबक वो जाबक लगा करके दुखी का तिलक करके दिया। नाम हुआ समानंद। बोला दुखी आज से तुम्हारा नाम समानंद तुम शाम को आनंद प्रदान करोगे। दूसरा समा समा शब्द कर राधा रानी तुम हमें भी आनंद प्रदान किए हैं इसलिए तुम्हारा नाम समानंद है आज से। इसलिए समानंद परिवार में जितना सारे वैष्णव लोग हैं सब लाल तिलक है। किसी किसी का तिलक में बीच में नूपुर का चिन्ह अंकित रहते हैं। विशिष्ट कृपा प्राप्त व्यक्ति है राधा रानी का। तो जीवो गोस्वामी पाद के पास आकर के सब कुछ कहा। जीवो गोस्वामी बहुत खुश हो गए। गौरव मंडल में न्यूज गया खबर पहुंच गया जय दुखी का नाम समानंद हो गया तिलक चेंज हो गया। हृदय चैतन्य बहुत गुस्सा हो गया। हमारे शिष्यों का ऐसा काम किया मैं अभी जाता हूं ब्रज में फटाफट भागा वहां से ब्रज का तरफ। ब्रज में आकर के पहले दुखी को पिटाई। बोला हमारा शिष्य बनकर तुम इस प्रकार काम कर रहे हो हम तुम्हारा नाम दुखी दिया था तुम समानंद नाम तिलक चंद कैसे कर लिया। चुपचाप सब कुछ सहन किया। रात को राधा रानी हृदय चैतन्य कह रहे हैं जो मैंने नाम चेंज किया तुम्हें क्या तकलीफ है हम अपना इच्छा परवश होकर किसी को क्या नाम दिया क्या चेंज किया ये तुम्हें क्या तकलीफ हो गया। हमारा कोई स्वतंत्रता है नहीं क्या झाड़ के चला गया। सवेरे उसको गोद में लेकर के बहुत प्रेम किया। तुम धन्य हो जो राधा रानी की कृपा प्राप्त किए हो। ये दुखी जिसका नाम समानंद प्रभु हुआ समानंद प्रभु उत्कल देश में प्रचार किए। श्रीनिवास जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। এই সমানন্দ মরুত্তম আর শ্রীনিবাস তিনো প্রভু মিল করকে যব গৌরীয় গ্রন্থ লেকর কে কহাঁ আয়ে আমার বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট ওই পরে যো বীর হামবীর কা উস সময় রাজ থা বাঁকুড়া মে লাল বাঁধ বর কে বিখ্যাত বাঁধ হ্যাঁ তালাব যো সব কোই দেখনে কে লিয়ে ওহাঁ যাতে হ্যাঁ যাহাঁ পর মদন মোহন জি কা দো কামান আভি তক রাখা হুয়া হ্যায় এক কো উঠায়া এক কো উঠা নেই পায়া যব মদন মোহন পর্তুগিজ লোক যব বাঙাল কো আক্রমণ কিয়ে থে তো রাজা নে মদন মোহন জি কে ভক্ত বলা আভি তো আম হার যায়েঙ্গে জো করনা আপ করো তো উনহোনে দুনো কামান দো এসা দবা করকে পর্তু লোক কা সাথ ঝগড়া কিয়া আর সব কো মার গিরায়া ফির বাদ মে ওহী কামান ও লালবান মে ডাল দিয়া উহাঁ সে এক কামান উঠা করকে পেড় মে জো তালাব কা পাড় হ্যায় উহাঁ রাখা হুয়া আর এক অন্দর পড়া হুয়া বিবি ये भक्त वात्सल्य जिस प्रकार जगन्नाथ जी अपना भक्त के लिए भक्त का शादी नहीं हो रहा शादी कराएगा भगवान भी कैसा देखो भक्त का शादी करेंगे लड़की लड़ेंगे भगवान खुश जाते हैं इसे कहते ना तुम्हारो वैष्णव वैभव तुम्हारो हमारे करुण दया तबे तबपति हवे मोर गति पावत पद छाया भक्त भगवान का संपत्ति भगवान अपना भक्त का सब कुछ देखभाल करते हैं उनका खाना पीना रहना पहनना शादी वगैरह भी करा देते हैं कितना अच्छा है आजकल माँ बाप क्या करते हैं अगर बच्चा नहीं करता तो तुम्हारा शादी नहीं होगा जाओ बच्चा कमा लेता शादी कर लेगा अभी कोई टेंशन नहीं है नहीं भगवान ये नहीं करते कमाओ चाहे ना कमाओ चलो बहुत सारे प्रमाण मिलेगा आपको देखो जाह्नवी माता तब जब ये लोग वहां पर जाके पहुंचा तो वीर हम्बी ने सब ग्रंथों को चोरी कर लिया जब देखा ग्रंथों को ऊपर का श्लोक पढ़ रहे हैं ऊपर का श्लोक पढ़ते पढ़ते उसका चित्त तो चेंज हो गया भक्ति सामत सिंधु रूप को सही बात बोले ग्रंथों लिखा कौन इसको ढूंढना पड़ेगा कोई पंडित इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है क्या व्याख्या करेगा उस समय क्या था अनुकूलिनो कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा ये जो कृष्ण अनुशीलन शब्द ये शब्द किस प्रकार है नारायण अनुशीलन निसिंग अनुशीलन विष्णु अनुशीलन वामन अनुशीलन वराह अनुशीलन नट उत्तमा भक्ति भक्ति है लोग उत्तमा नहीं कह सकते उत्तमा करने के लिए कृष्ण अनुशीलन नहीं करना पड़ेगा जो नहीं कृष्ण अनुशीलन करता है उसको उत्तमा भक्ति कहा जाएगा बाकी सब भक्ति है क्योंकि पूर्ण वस्तु का जब तक अनुशीलन नहीं होगा तो पूर्णता प्राप्त भी नहीं होगा यही पूर्णता प्राप्ति करने के लिए कृष्ण अनुशीलन रूप गोस्वामी पाद ने लिखे हैं तो बाद में श्रीनिवास तीनों व्यक्ति तीनों जब चला गया नरोत्तम दास खेतुरी चला गया श्रीनिवास आचार्य बंगाल में रह गया और समानंदपुर उड़ीसा चला गया बाद में ग्रंथ प्राप्त हुआ और उड़ीसा में जाकर के समानंद प्रभु वहां ऋषिकानंद को श्रेष्ठ माना जाता है जितना सारे शिष्य था वहां ऋषिकानंद को श्रेष्ठ माना जाता है और उन्होंने उत्कल देश का निसिंगपुर गांव में सदा सर्वदा अवस्थान करते थे और बहु मुसलमान को शिष्य बनाए थे श्यामानंद प्रभु का श्रीपाठ गोपीबल्लभपुर जहां पर श्री गोविंद विग्रह प्रतिष्ठित है गोपीबल्लभपुर ऐसा एक जगह है जहां पर गौड़ीय ग्रंथों का स्टॉक है ओरिजिनल जो गोस्वामी को द्वारा लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ गोपीबल्लभपुर में रखा हुआ है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, प्राण गोपाल दास ब्रह्मचारी से कुछ नाम है उनका, उनका बहुत प्रशंसा किए थे उन्होंने। गोपी बल्लभपुर का जो मंदिर का क्या बोलते गुरु थे, उन्होंने बहुत प्रशंसा किए थे, जो उनका टीका टिप्पणी बहुत अच्छे हैं। सामानंद शिष्य करिलेन स्थाने स्थाने, राधानंद श्री पुरुषोत्तम मनोहर चिंतामणि बलभद्र श्री जगदीश्वर उद्धव अक्कुर मधुवन श्री गोविंद जगन्नाथ गदाधर श्री आनंद आनंदानंद श्री राधामोहन, ये मुख्य मुख्य उनका शिष्य का नाम है। और ये सब शिष्य का साथ में सदा भाषे संकीर्तन सुखेर तरंग भक्ति रत्नाकर। 1552 शकाब्द में आषाढ़ी कृष्ण प्रतिपद निसिंगपुर में उदंड राय भुयार घर में इन्होंने अप्रकट हुआ था। इनका तीन नाम था, दुखी, दुखिनी और कृष्णदास। इनका माँ का नाम था श्री दुरिका, पिताजी का नाम था श्री कृष्ण मंडल। ये सामानंद प्रभु चरित्र सामानंद ये शॉर्ट में इतना ही दिया हुआ है, विस्तृत देखने के लिए गौड़ीय भक्त जीवनी बोल के ग्रंथ है, उसमें विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। जो श्रीनिवास आचार्य का साथ लोग का जो प्रचार लिया सब दिया हुआ है, तो शॉर्टकट में इतना ही जानने के लिए। अभी आएगा अपना बंशी बदनानंद, श्री बंशीदास ठाकुर श्रीनिवास प्रभु का शिष्य है। इनका सिपाट बहादुरपुर, भातार नाम सामदास। कर्णपुर कविराज बंशीदास ठाकुर आचार्य साथे वास बहादुरपुर, कवि कर्णपुर बंशीदास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ये सब एक साथ में रहते थे। कर्णानंद का मत में बहादुरपुर से बुधुरी और बाद में अमीना बाजार में इन्होंने निवास किए थे। श्री श्री गोपीर मंदिर सेवा प्रतिष्ठा किए थे। श्री वंशी बदन ठाकुर जय महाशय प्रभुर प्रिय शाखा है मधुर आशय। इन्होंने सर्वशास्त्र में पांडित्य था और सदा सर्वदा महाप्रभु अनुरक्त थे और राधा कृष्ण का जो लीला है आस्वादन करते थे। इनका वंशी बदन, वंशीदास, वंशी बदन, बदानंद ये पांच नाम था। 1416 शकाब्द में इनका आविर्भाव हुआ था। पूर्व लीला में कृष्ण प्रिया जो वंशी है वही वंशी बदन हुए हैं। वंशी बदन कविदत्त सारंग ठाकुर कुलिया जो पहाड़पुर है इस जगह में सदा सर्वदी लोग निवास करते थे। इनका पिताजी का नाम था छकड़ी चट्टोपाध्याय। कोई कोई कहते हैं 1416, कोई कहते हैं 1427 वंशी बदन प्रभु का आविर्भाव हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था उस समय महाप्रभु और औजित्यपुर उनका घर में विराजित थे। महाप्रभु सन्यास लेने के बाद नवद्वीप से सोची माता और विष्णुप्रिया देवी का रक्षक रूप में इनको नियुक्त किया था। जब जीव गोस्वामी नवद्वीप आए थे तो उस समय बंशीवदन प्रभु था और बंशीवदन प्रभु का साथ में लेकर के नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी साहब श्रीनिवास लोग नवद्वीप का परिक्रमा किए थे। वंशीवदन प्रभु शादी किए थे, इनका दो पुत्र है नित्यानंद और चैतन्य दास। श्री वंशीवदन का पूर्व पुरुष को स्थापित श्री श्री गोपीनाथ विग्रह थे। वंशीवदन प्रभु पानबल्लभ नाम का श्री विग्रह प्रतिष्ठा किए थे। बाद में बिल्लो गांव में इन्होंने निवास किया था। वर्तमान में जो बिल्लो ग्राम के जितना सारे भट्टाचार्य जो लोग है सब इनका ही वंशधर है। नवद्वीप धाम में विष्णुप्रिया देवी का अनुमति लेकर के इन्होंने श्री गौरांग विग्रह का प्रतिष्ठा किया था। आज भी यादव मिश्र का वंश परंपरा पे जो लोग हैं वो लोग इस विग्रह का सेवा कर रहे हैं। वंशीवदन का पुपुत्र बल्लभ दास वंशी विलास ग्रंथ रचना किए थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में जो है थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, बाकी शॉर्ट शॉर्ट में जो वैष्णव चरित्र इतना दिया हुआ है। और दूसरा आज क्या है, हनुमान जी जय बजरंग बली, वही बोलता है ब्रजांगना जी। हमारे गौड़ीय शास्त्र लोग क्या कहते हैं, कोपिपति दास्य। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर एक श्लोक लिखा, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम राजीव लोचन। यद्यपि नारायण बा राम में कोई अंतर नहीं है, फिर भी मेरा लिए जथ सर्वस्व श्री रामचंद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। यही हनुमान जी गौरलीला में मुरारी गुप्त बहुत कोशिश किया था महाप्रभु ने वो उनका माइंड को चेंज करने के लिए, ये तुम कृष्ण भजन करो, कृष्ण रस का सागर है। रात भर सोचा, सुबह क्या बोलता है, रघुनाथ चरणे मोई बेचियाची माथा कारिते ना पारू मोई मने पाऊं बैठा। हे प्रभु एक आपका आदेश और मेरा ये, मैं रघुनाथ का चरण में मेरा मस्तक को बेच दिया है, मैं वहां से अपना मन को नहीं निकाल पा रहा हूं, इससे तो आपका सामने मेरा मृत्यु हो जाए तो सबसे अच्छा है। तो महाप्रभु खुश हो गया, धन्य धन्य मुरारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे जो निष्ठा मेरा वाक्य में भी तुम्हारा निष्ठा का चेंज नहीं हुआ। हाँ तुम चेंज करोगे भी कैसे, तुम स्वयं हनुमान हो। ये तो बोली रामदास नाम लिखी लो कपाले, लिख दिया रामदास, ये हनुमान जी है। एक बार हनुमान जी कहां पर है, किंग पुरुष वर्ष में, सदा सर्वदा रामायण सुनते रहते हैं किंग पुरुष वर्ष में। अभी रामकथा में तो अपना गांव में सुनता था, उस समय क्या करते थे, हनुमान जी के लिए आसन लगाना पड़ता था, और कोदोली कानन तेजी होनु ऐसो एको बार ऐसा करके कीर्तन करते थे। जो हनुमान ज्यादा सदा कहां रहते थे, केला का बागीचा में, पर वहां से एक बार आकर के ये राम कथा सुनने के लिए इस आसन में आप विराजित हो, ऐसा करके हनुमान जी का आवाहन करके वो आसन में उसको एक आसन देता था। रोज जितना दिन रामकथा होगा आसन रहेगा, क्योंकि जहां पर भी रामकथा होता है हनुमान जी वहां पर हाजिर हो जाते हैं रामकथा सुनने के लिए। ये तुलसीदास की कथा में आते हैं, तो तुलसीदास ने पकड़ लिया, ब्राह्मण वेश में आकर के रोज रामकथा सुनता था। उनको मालूम पड़ गया ब्राह्मण को जो है वृद्ध ब्राह्मण कर, एक दिन जाकर पकड़ा, बोला आप रोज आप ब्राह्मण नहीं है, आप अपना स्वरूप दिखाओ। तो हनुमान जी तुलसीदास को अपना स्वरूप दिखाया। यही हनुमान किंग पुरुष वर्ष में श्री रामचंद्र जी आराधना कर रहे हैं। गुरु का मन में बहुत अहंकार हुआ है, बहुत अहंकार, बोलते हमारे साथ भगवान कोई नहीं है, हम जैसे वेग में चल सकते ऐसा कोई नहीं चल सकता है, और हमारे जैसे प्रभु भक्त तो भी कोई नहीं है, क्यों हम प्रभु को कहां कहां लेके रहता है, उड़ा के लेके जाता हूं। तो भगवान सबका गर्व दर्पहारी नारायण, अर्जुन राखिलो नाम दर्पहारी नारायण, अर्जुन नाम का भगवान का दर्पहारी, किसी का अहंकार नहीं रखते भगवान। तब बोला काम करो गुरु जी, द्वारका में निवास कर रहे थे भगवान, बोले गुरु जी काम करो, जाके हनुमान जी किंग पुरुष वर्ष में है उनको बुला के ला और जाके कहो द्वारकानाथ आपको दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, हनुमान गुरु अपना खुशी होकर गया, हनुमान अपना पूछ में घंटी लगा करके श्री रामचंद्र का आराधना कर रहे हैं। जाके गुरु जी कहा हनुमान जी आपको बुलाया कौन, द्वारकानाथ। हनुमान जी कुछ उत्तर नहीं दिया, बोला आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, जब पूजा में डिस्टर्ब तो हनुमान पूंछ से ऐसा मारा सीधे द्वारका में जाकर गिरा दिया, एक बार एक चंडा मारा, एक बार ऐसा पूंछ घुमाया द्वारका में जाकर गिर गया। देखा गुरु जी भगवान के सामने आखाड़ खा के गिरा हुआ है। बोला गुरु जी क्या हुआ, बोला हमारा ये हाल है, प्रजा जाए काम करो दोबारा जाओ, आज जाकर बोलो श्री रामचंद्र जी आपको बुला रहा है। तो द्वारका में वही किंग पुरुष वर्ष में जाकर के जब गुरु जी कहा जी आपको रामचंद्र जी बुला रहे हैं द्वारकापुरी में, बोला हाँ, बोला हमारे साथ जाना, आपको एक काम करो आप तो जल्दी जा नहीं पाओगे, हमारे पीठ में बोल के चलो मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बोला नहीं तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। बोला कैसे, बोला आप जाओ तो सही, जब इधर से आकर के देख रहे हैं गुरु जी, तब इधर देखते हैं हनुमान जी द्वारकापुरी में श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण ने राम बन गया और रुक्मिणी ने सीता बन गया। तो जो बोला मैं तो वहां बुला रही, यहां आके पहुंचा कैसे, ये हनुमान जी है। रामायण समापन को हो रहा है, रामचंद्र अगस्त मुनि से मिला और अगस्त मुनि से जाके मिलने के बाद उनको कहा हे अगस्त जी आपने जो कथा बाली और जो रावण का जो बल में जो बलवान का बात कहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का बल हनुमान जी का बल के चीज बहुत श्रेष्ठ ज्यादा नहीं है। फिर भी एक संशय ये है, जब हनुमान जी सुग्रीव का साथ में है और बाली सुग्रीव को तकलीफ दे रहा है, तो हनुमान जी कुछ क्यों नहीं किया, क्या कारण है कि इतना बलवान और फिर भी इस प्रकार सुग्रीव जी तकलीफ उठा रहा है लेकिन हनुमान जी चुपचाप बहुत सहन कर रहा है, कुछ बोलते भी नहीं है, इसका कारण क्या है। हमको तो लग रहा है ये शायद हनुमान को उसमें अपने बोल का पता ही नहीं होगा, जैसे उन्होंने वानरराज सुग्रीव को इस प्रकार कष्ट उठाते हुए देखा, आप कृपा पूर्वक ये हनुमान जी के बारे में विस्तार से कहिए। ठीक है, भगवान हनुमान जी के बारे में नहीं जानते, अब अपना भक्तों के बारे में, लेकिन भक्त चोरी तो आस्वादन करना, जिस प्रकार भक्त लोग भगवान का चरित्र का आस्वादन करते हैं, उस प्रकार भक्त भी ये भगवान भी भक्त का चरित्र का भी आस्वादन करते हैं। तो जब रामचंद्र जी इस प्रकार बात कहा तो रामचंद्र जी है, हनुमान जी भी वहीं पर है, तो अगस्त जी हनुमान जी के सामने कहने लगा हे रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आपने जो कुछ भी कहते हैं सब सत्य है। बाल बुद्धि गति इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है, क्या जिनका अभिशाप कोई व्यर्थ नहीं होता है, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें साप दे दिया था, ये बाल रहते हुए भी इन्हें बलों का अपना पता नहीं चलेगा। हे श्री रामचंद्र जी, बचपन में इन्होंने जो कुछ भी काम किया इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन दिनों वो बड़ भाव से अंजांतर भी रहते थे। अगर हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपका हार्दिक इच्छा है तो एकाग्र होकर के सुनिए, मैं आपको हनुमान जी का चरित्र सुना रहा हूं। भगवान सूर्यदेव का वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया, उस सुमेरु पर्वत नाम का जो पर्वत थे, उस पर्वत में हनुमान जी का पिताजी केसरी राज्य करते थे। उनका अंजना नाम से विख्यात पत्नी थी। उनका गर्भ से बाहुदेव ने एक उत्तम पुत्र का जन्म दिया। जब हनुमान जी जन्म हुआ उस समय उनका शरीर का रंग कैसे था, ठंडी में धान का रंग कैसे होता है, उसी प्रकार उसी का शरीर का वर्णन था। और एक दिन माता अंजना ने फल लाने के लिए जंगल में गए और गहन वन में चला गया। और उस समय हनुमान जी अपना माँ से बिछड़ गए और उनको बहुत भूख लगा, भूख का कारण उन्हें रोना शुरू कर दिया। और उस समय सवेरे ठीक हो रहा था तो रोते रोते उन्होंने देखा ये पूर्व दिशा में एक लाल क्या उड़ रहा है, तो समझा ये कुछ फ्रूट होगा, तो वहीं से उन्होंने कूदी मारा और सूर्य के ऊपर चलते गया। जब इन्होंने सूरज का तरफ जा रहे थे, इनको भी देखने में छोटा सा सूरज लग रहे हैं और आकाश में उड़ते आ रहे हैं, और उस उड़ने का जो प्रोसेस था, उनका जो कला किया था, वो देख करके देवता दानव सब बहुत बड़ा विस्मय हो गया। उन्हें सोचने लगा ये बाऊ जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ता है, इससे तो कहीं ज्यादा वेग इस हनुमान जी में है, और इतना वेग किसी मनुष्य का मन में भी नहीं है और गुरुर में भी नहीं है। अगर बाल्य अवस्था में इस प्रकार ऐसा वेग हो तो यौवन में इसका वेग कितना होगा। तो अपने पुत्र सूर्य की तरफ जा रहे हैं, ये देख करके पवन देव ने क्या किया, पीछे से ठंडी हवा, क्योंकि सूर्य का ताप से जल ना जाए, तो पीछे से बर्फ लेके जा रहे हैं, बर्फ का ठंडी हवा दे के जा रहे हैं। और इस प्रकार बालक हनुमान अपना पिताजी का ताकत ये सहस्र योजन आकाश में लांगते चला गए और सूर्यदेव का साथ पास पहुंच गया। तो सूर्यदेव ने देखा मेरा पास तो आ गया ये, अरे बालक है, इसका गुण और दोष का कोई ज्ञान भी नहीं है, इसलिए और इससे फ्यूचर में बहुत सारे काम होने वाला है। तो सूर्यदेव अपना ताप को संकोच कर लिया, सूर्यदेव उसके लिए शीतल बन गया। आज जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए गया था, उसी दिन राहु ग्रहण का दिन था, सूर्य को खाने के लिए आया। जब हनुमान जी ने देखा जी राहु ने सूर्यदेव का रथ को पकड़ा है, तब उनका गुस्सा हुआ है, बोला हम इसको खाने के लिए आया, दूसरा कौन आया, चलो पहले इसको खाओ। तब सूर्य को छोड़कर राहु को खाने के लिए गया, राहु वहां से डर के मेरे भागा, भागते भागते जाके इंद्र का शरण पहुंचा, जाके कहा हे वासव, आपने दो दिन हमको खाने के लिए रखा, पूर्णिमा और अमावस्या दिन सूर्य और चंद्र का हम खा सकते हैं। अगर दूसरा कौन आकर के वो खाना शुरू कर दिया, दूसरा कहां से राहू पैदा किया आपने? आज देखा आज हम जब खाने गया था वो दूसरा कोई उसको खा रहा था और वो लास्ट में हमको भी खाने के लिए आया, तो आप इधर क्या कर रहे हो? इंद्र का बहुत गुस्सा हुआ, बोला चलो देखता हूं दूसरा राहु कहां से आया, हाथ में वज्र लेकर के और उन्होंने किया। जब अभी इसको ताकत मिल गया राहु का, पीछे इंद्र आ रहा, चिंता को विवाद ने जोर से जोर लगा के दोबारा खाने के लिए गया सूर्य को। तब देखा भी दूसरा कोई फ्रूट आ रहा है, एक फ्रूट इधर रखा हुआ स्टॉक में, दूसरा कोई आता है, लेकिन हम लोग नहीं करते क्या, एक है चलो और एक फ्रूट ले लूं। कैसे बोला ये और एक फ्रूट आया तो इसको भी पहले खा लो, इसको हमारे पास स्टॉक रहने दो। तो उसको पकड़ने के लिए वो जब पकड़ के भाग रहा था तो इंद्र वैरावत लेकर आया, बोला अभी चौथा फ्रूट कहां से आ गया, चलो अभी इसको भी लेना पड़ेगा। तो वैरावत पर भागा उन्होंने, एक साथ तीन फ्रूट हो गया, सूर्यदेव राहु और वैरावत। तो हनुमान जो खाने के लिए बहुत मिल रहा है अभी, तो उन्होंने जो ओरावत को देखा, बोले अभी एक फूट है चलो इसको भी अभी खाने के लिए पकड़ना चाहिए। तो उसके पास जब आया तो ओरावत पीछे भागने लगा। अब इंद्र बहुत असमंजस में पड़ गया, बोले ये तो बालक है और इसको हम ब्रज चलाए कैसे, फिर भी हाथ से ब्रज निकल गया उसका। आज ब्रज जो हाथ से छूट गया जाकर के हनुमान जी ऊपर लगा, और हनुमान जी जैसे ब्रज लगा हनुमान जी उनका नीचे बेहोश होकर के नीचे गिर गया। और पहाड़ पर आकर गिरा और वज्र का आघात से उनका एक हनु टेढ़ी टूट गया। तो जब बाहुदेव पीछे है, जब देखा हमारा पुत्र को वज्र का आघात किया, वज्र हमारा पुत्र बेहोश हो गया, तो बाहुदेव ने क्या किया, आपने आपको रोक लिया, सबका पेट फूलने लगा, सब संडास पेशाब सब बंद, ब्लड सर्कुलर सब बंद हो गया। अभी पूरा ब्रह्मांड तड़प रहा है, इंद्रों का भी वही हाल है। बोला ये तो अद्भुत हो गया, सब ब्रह्मा के पास गया, बोला देखो आपने बाहु देवता को हमको प्राणों के लिए बनाया, उन्होंने अभी अपने आप को रोक लिया, अभी इसको प्रतिकार तो कुछ करना पड़ेगा। बोला चलो अभी, तो उसने बाहुदेव अपना पुत्र को लेकर गुफा के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने इंद्र ये अपना आकर के उन्होंने आया और ब्रह्मा अपना समस्त देवता लोग को साथ में लेकर के आए और आकर के बाहुदेव कहा, ये बाहुदेव दुखी तो मत हो, आपका पुत्र को जीवनदान में दे देता हूं। ब्रह्मा ने अपना हाथ उनके ऊपर ऐसे, पुत्र जीवित हो गया, पुत्र जीवित जैसे हो गया बाहुदेव ने अपना पराक्रम को छोड़ दिया, सब जगत सुस्त हो गया, सब सुस्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे समस्त देवता गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस, आप लोग जो ये पवन कुमार को देख रहे हो ये भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा और आप लोग का महाविपत्ति से उद्धार करेगा, इसलिए आप लोग अपना अपना बल इसे अपना अपना शक्ति को प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने क्या बोला, ये मेरा जो ब्रह्मदंड है इस ब्रह्मदंड से इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है, बा जितना सारे लोग ब्राह्मण लोग इसको अभिशाप भी देगा वो अभिशाप फलप्रसू नहीं होगा। जब भी ब्राह्मण लोग इसे दंड देना चाहे, अभिशाप नहीं दंड, कोई ब्राह्मण इसको दंड देना चाहे कोई दंड इसका कार्यकारी नहीं हो सकता है, ये ब्रह्मा ने बर दे दिया। इसलिए जब ब्रह्मास्त्र ताक गया था कौन, इंद्रजीत, तो हनुमान ने स्वेच्छापूर्वक बांध लिया था अपने आप को, कि ब्रह्मा जी का सम्मान रक्षा करना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी चाहते थे तो ब्रह्मास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकते थे। ये हनुमान जी है, उन्होंने तो ब्रह्मा ने अपना वर दिया, इंद्र ने क्या वर दिया, उनका गला में बहुत सुंदर माला डाल दिया और कहा मेरा हाथ से छूटे हुए वज्र इसको कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये भी एक बार मिल गया। और आज से इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा, उन्हें एक नाम भी दे दिया। सूर्य ने अपना वर प्रदान किया, ये मैं अपना तेजो का 100 भाग इसे प्रदान करता हूं हनुमान जी को, और इसका ये छोड़ करके ये हमारे पास शास्त्र अध्ययन करने के लिए आएगा। जितना शास्त्र वेद वेदांत पुराण उपनिषद रामायण महाभारत जो कुछ भी है सब हमसे सुनेगा। तो जब सूर्यदेव सूर्य उगते थे तो हनुमान जी उसका ऊपर ऐसा मुंह करके वो शास्त्र व्याख्या सुनते जाते थे, उदयाचल से अस्ताचल तक, मैं सुबह से लेकर शाम तक शास्त्र चलता था हनुमान जी का। तस्पर वरुण देव ने उसको बर दिया जे मेरा पास और पानी इसको कभी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, फिर हनुमान पानी में डूबेगा तो कुछ होने का होगा नहीं। जमराज ने बर दिया मेरा दंड के द्वारा इसका कोई बाद नहीं होगा और सदा सर्वदा निरोग रहेगा। कुबेर ने कहा मैं इसे ये बल प्रदान करता हूं युद्ध काल में इसका कभी दुख नहीं होगा, सदा सर्वदा फुस्फूर्ति ही रहेगा, और मेरा गदा जो है ये कभी इसको बाद नहीं करेगा। इस प्रकार शंकर जी ने उन्हें बल प्रदान किया, मेरा पाशुपत अस्त्र से इसको कुछ नहीं होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा ने बर प्रदान किया, मैं जितना सारे अस्त्र शस्त्र बनाया किसी अस्त्र शस्त्र से इसको बाध नहीं हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक को लेकर दोबारा कहा इस बालक ने दीर्घायु महात्मा समस्त ब्रह्मदंड से अवैध होगा, मृत्यु नहीं होगा। जब सब लोग ने उनको बर प्रदान किया तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और वायुदेव से कहा हे पवन देव तुम्हारा पुत्र मारुति शत्रु के लिए भयंकर होगा और मित्र के लिए अभय जाता होगा, युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं सकता है, ये इच्छा अनुरूप रूप धारण कर सकेगा, जहां जाना चाहेगा जा सकेगा, इसका गति इच्छानुरूप होगा, कोई जोर से जाएगा कोई धीरे जाएगा कोई बीच में रेस्ट लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आए कपिश्रेष्ठ बहुत यशस्वी होगा, भविष्य कर व्याख्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति रावण को संहार करेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रसन्नता के लिए बहुत सारे अद्भुत रोमांचकारी कर्म करेगा, लंका दहन सीता संवाद गंधमाधव लाना और इंद्रजीत को वध करने के लिए यज्ञों का नष्ट करना, क्या क्या नहीं करता हनुमान जी। एक बार ये तो बुक में तो बहुत सारे दिया हुआ है, एक बार सीता देवी मांग में सिंदूर लगा रहे थे, तो बोला माँ आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो, तो सीता ने आज लगा तुमको मालूम नहीं है, बोला नहीं ये सिंदूर अगर हम लगाते हैं तो पति सुरक्षित रहता है, रामचंद्र जी सदा सर्वदा सुरक्षित रहेगा। बोला अच्छा, तो हनुमान जी गया सुन के गया जाकर के घर में जितना सिंदूर था ना पूरा लपट लिया, पूरा लपट करके राज दरबार जाकर हनुमान जी या दरबार बैठा रामचंद्र जी का, उस दरबार में पूरा सिंदूर तेल लगा करके लाल टुक टुक करके आ गया। बोलते हनुमान क्या है अभी आज ईशा क्यों बेच लिया, बोला माता सीता ने कहा ये सिंदूर का टिप लगाने से अगर आप सुरक्षित रहोगे तो मैं पूरा बॉडी में टिप सिंदूर का लगा लिया तो आप सदा सर्वदा सुरक्षित रहोगे। ये हनुमान जी तो वहां पर एक वर प्रदान किया हनुमान जी को, ये जो कोई भी व्यक्ति आपको सिंदूर और तेल चढ़ाएगा वो सदा सर्वदा निरोग रहेगा और उसका पति आगे आप लोग समझ लेना, इसलिए सिंदूर हनुमान जी का सिंदूर लगाया जाता है। बहुत सारा हनुमान जी का कथा है पुराण में, याद तो नहीं है, एक बार वही रामचंद्र जी और हनुमान से भी युद्ध हुआ था, क्योंकि किसी व्यक्ति को रामचंद्र जी मारने के लिए बड़ा इसका वध करना पड़ेगा। वो तो व्यक्ति आके बोला हम किसका शरण जाए, तो हनुमान जी का शरण में आया। तो हनुमान जी का शरण में आकर के हनुमान जी या रामचंद्र से युद्ध हुआ, लास्ट में हनुमान जी या रामचंद्र जी हार गया, उसका वध नहीं हुआ। ये बहुत सारे स्टोरी देते हैं, आप लोग इसका स्टोरी ज्यादातर हम लोग देखा था, पिक्चर देखा था, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। उस पिक्चर में हनुमान जी का बहुत सारे कलाकारी का वर्णन दिया गया है, बहुत सारे दिया गया है। ये हनुमान जी है, ये हनुमान चालीसा संकट मोचन करे हनुमाना, तो बहुत सुंदर है। कोई कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा भी पाठ करते, देखो तो संकट मोचन, जिस जिस जायगा में संकट होता है हनुमान जी का नाम लेने से संकट टल जाता है, इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। चलो घोड़ी भी 9:05 हो गया, हमारे भी हनुमान जी बजरंग बली की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय।